आज का रात्रि क्लास है 5/11/1966। बड़ी 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 बड़े ते बड़ी रायल पढ़ाई, किसने पढ़ाई? सुप्रीम सोल ने पढ़ाई सुप्रीम टीचर के रूप में। बेसिक पढ़ाई होती है माँ की गोद में, माँ के प्यार में, और वो भी बेहद की माँ। सारे जगत की माँ, और उस जगत की माँ में काम करने वाली, पढ़ाई पढ़ाने वाली, चैतन्य आत्मा चंद्रमा दो मस्तक पर दिखाई जाती है। किसकी मस्तक पर है? जगत अम्मा। जगत कहा जाता है 500-700 करोड़ को। जो पहला टीचर है, लेकिन बड़े से बड़ा बेहद का टीचर नहीं। यहाँ किसकी बात बताई? जो बड़े ते बड़ा 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 बड़ा, जिसकी बड़ी 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 पढ़ाई, रायल पढ़ाई, ये बात बच्चों की बुद्धि में आ रही है, क्या बात है? जो पढ़ाई ग्रेट कहे जाने वाले विधर्मी विदेशी धर्म पिताओं ने भी नहीं पढ़ाई, उन बापों के बाप देवहरी धर्म गुरुओं का बाप, सारी मनुष्य शक्ति का बाप, इसे सब धर्म पिताएं मानते आए हैं। आदम एडम आदिनाथ आदिदेव के रूप में, वो भी उतनी ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। जितनी ऊंची पढ़ाई सुप्रीम सोल आकर के पढ़ाता है, बड़ी रायल पढ़ाई है। राजाओं महाराजाओं को भी, रॉयल्टी सिखाने वाले, वो पढ़ाई की बात बच्चों की बुद्धि में आ रही है, है? आ रही है। और सुप्रीम सोल जो सुप्रीम टीचर है, वेद का टीचर है, जो आत्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारी होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल में क्या सत्य है, क्या ज्ञान है, क्या जानने योग्य है, तो सब पढ़ाई की बात बच्चों की बुद्धि में आ रही है। अरे भगवान पढ़ाते हैं, डिफिनीशन बताए, कौन भगवान? शिव बाबा पढ़ाते हैं। भगवान की डिफिनीशन क्या बताई है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। जो शिव बाबा इस सृष्टि में सदा सत्य है, इस सृष्टि में साकार सृष्टि में आत्माओं का बाप शिव सदा सत्य है, या शिव बाबा सदा सत्य है? शिव बाप को शिव बाबा नहीं कह सकते, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो तो आत्माओं का बाप है, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उन आत्माओं का बाप के साथ कोई दूसरा संबंध नहीं। अनेक प्रकार के संबंध, सर्व संबंध किसके साथ जोड़े जा सकते हैं? है? शिव बाबा के साथ जोड़े जा सकते हैं। वो बताया, भगवान पढ़ाते हैं, धनवान नहीं। क्या? कितना भी बड़ा धनवान हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, भविष्य में होने वाला हो, वो धनवान भगवान नहीं हो सकता। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। वो भगवान, भगवान कैसे है? भगवान तो प्योरिटी का आधार है ना, है? शिव बाबा किसका बच्चा है? शिव बाप का बच्चा है। शिव बाप के पास जो पढ़ाई है वो अखूट है या खूटने वाली है? अखूट है। उसके लिए शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाये पूर्णमेव अवशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई बच्चा पूरा ही निकाल ले, क्या ज्ञान का भंडार, योग का नहीं, योग लगाए सो योगी, उसको योग लगाने की दरकार है और है तो किसके साथ लगाएगा? है उससे ऊंचा कोई है? है कोई उससे ऊंचा नहीं। तो वो ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? है कि बड़े से बड़ी पढ़ाई दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से है, दूसरा नाम जगदम्बा के मुख से है, या उससे भी ऊंची पढ़ाई, रॉयल्टी वाली पढ़ाई कोई और मुख है जिसके द्वारा है, वो कौन मुख है? है शिव बाप को तो मुख ही नहीं होता
है?
शिव बाबा, और वो शिव बाबा जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो ज्ञान का अखूट आगार है, अखूट भंडार है, या और धर्म पिताओं की तरह अंतिम जन्म में आते आते वो भंडार खूट जाता है? है खूट जाता है। जब वो भंडार खूट जाता है इतना बड़ा भंडार है वो भी खूटे जाता है। कितना बड़ा भंडार है? नाम देते हैं, मैं किसने आता हूं है? अरे भूल गए, भारत में आता हूं, जड़ जमीन में आता हूं। कोई चैतन्य आत्मा है मनुष्य सृष्टि में जो आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी भा मैं रत रहने वाली है, लगी रहने वाली है, सचयुग त्रेता में तो सभी देवात्माएं ज्ञान का जो सार है ज्योति बिंदु उसमें समाई हुई रहती है, चाहे छोटा देवता हो चाहे बड़ा देवता हो,
वो सतयुग त्रेता की बात छोड़ भी दें तो द्वैतवादी द्वापर युग से यहां द्वैतवाद फैलाने वाले देह अभिमानी धर्म पिताएं दो दो धर्म दो दो राज्य दो दो भाषाएं दो दो कुल दो दो मतें पैदा कर देते हैं। उस द्वैतवादी द्वापर युग में वो आत्मा आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक भा अर्थात ज्ञान की रोशनी में रत बनी रहती है। चाहे वाइब्रेशन के आधार पर चाहे तीखी दृष्टि के आधार पर चाहे वाचा के आधार पर चाहे ज्ञान इंद्रियों के कर्म के आधार पर और चाहे कर्म इंद्रियों के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। द्वापर के आदि में उसके काम के आधार पर क्या नाम पड़ता है वेद व्यास। किसने लिखे वेद? व्यास ने लिखे। और वेद में भी वेदों का जो अव्वल नंबर वेद कहा जाता है ऋग्वेद। ऋक् माने सच्चाई। उसका भी अंश मात्र सार स्वरूप कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद् गीता, जिसका अर्थ ही है किसके द्वारा गाई हुई? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। माना उस द्वैतवादी युग में भी भगवान इस सृष्टि पर होता है या नहीं होता है? होता है, क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस सृष्टि पर कभी विनाश नहीं होता और उसके मुकाबले किसके मुकाबले जो 100% सत्य है उसके मुकाबले और जो होंगे वो नंबरवार ही होंगे कि 100% भी होंगे, क्योंकि गाया जाता है भारतीय परंपरा में भी गाया जाता है। सत्य एक है। अंग्रेज भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। इसका मतलब ये हुआ सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निराकार। कैसा निराकार? अकाल मूर्त है, जिसकी मूर्ति, उस मूर्ति को कोई काल नहीं खा सकता। सारी दुनिया की जितनी भी चैतन्य मूर्तियां हैं, चाहे देव आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, सबकी मूर्तियों को काल खा जाता है। लेकिन उस महाकाल के लिए गायन है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महाकाल में कौन सी आत्मा आती है जो सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है? दुनिया में भी देखें, पहले पहले बच्चा किससे पैदा होता है? है? वो कहता माँ से पैदा होता, वो कहता बाप से पैदा होता। अरे किसी ने सुना बाप से बच्चा पैदा होता है? है? अच्छा चलो माँ से पैदा होता, माँ में कहाँ से आया? तो जो बीज डालने वाला है वो ही बाप है। बीज को ही बाप कहा जाता है। यज्ञ के आदि में उस परम पिता ने, सुप्रीम सोल ने, सुप्रीम गॉड फादर ने, जिसका कोई बाप नहीं, कोई है, वो सबका बाप है, लेकिन उसका कोई बाप नहीं। उस बाप ने कौन सी माता में बीज डाला नई सृष्टि रचने के लिए? है, है। ब्रह्मा ही होगा, क्योंकि बोला है ब्रह्मा मुख से, मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो कोई तो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा जो परम ब्रह्म गाया हुआ है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय, ओनली उसको गुरुवे नमः, उसी गुरु को मैं नमन करता हूं जो ऊंचे ते ऊंचा करता रहे। आदि में भी गुरु कौन? परम ब्रह्म। परिवार में भी, लौकिक परिवार में भी आदि गुरु कौन? जो बच्चा आता है उसका आदि गुरु कौन हुआ? है? माता ही तो हुआ। अरे बाप गुरु बनता है? माता ही तो गुरु है। तो वो है परम ब्रह्म, जो ब्रह्मा सो विष्णु माना। पंचमुखी ब्रह्मा गाया जाता है, चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया जाता है, ब्रह्मा अनेकों के नाम दे दिए, परंतु उनमें भी नंबरवार पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। विष्णु में कोई बाईं ओर का सहयोगी रूपी भुजा, कोई दाईं ओर की सहयोगी रूपी भुजा, भुजा माने सहयोगी आत्मा, कोई बाईं ओर की नीची भुजा, कोई ऊंची भुजा, और कोई दाईं ओर की नीची भुजा, कोई ऊंची भुजा। नंबरवार हैं लेकिन भुजाएं हैं, स्वयं संचालित हैं, या उन्हें चलाने वाला कोई और होता है? है भुजाएं अपने आप तो नहीं चलती, भुजा माने सहयोगी, जरूर कोई की सहयोगी है। तो विष्णु की उन चारों भुजाओं को चलाने वाला कौन है और कहाँ है? है कहा? अरे कंधों में है, गले में है, कहाँ है? ब्रकुटी में, जिसे कहते हैं भरी पूरी कुटी। कैसी कुटी? अंतिम जन्म तक भी भरी पूरी कुटी है। क्या षष्ठी के आदि में भी उसका नाम विष्णु? क्या नाम? विष्णु, नो विशैताल। और सृष्टि के अंत में भी विष्णु, नो विशैताल। जहां विषय वासना होती है, विचार होता है, वहां झगड़ा जरूर होता है, चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो। घर घर में झगड़ा होता है या नहीं होता है? तो 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में एक को छोड़ करके और कोई पेयर नहीं है जिसका अंतिम जन्म में झगड़ा ना होता हो। एक ही पेयर है, आदि सो अंत। आदि में भी विष्णु था और अंत में भी विष्णु हो करके रहता है। तो वो विष्णु वाली आत्मा जो गीता में परमात्मा इस नाम से कही गई है, गीता में शब्द आया है परमात्मा इति उदाहरण है। क्या उसे परमात्मा कहेंगे? भक्ति मार्ग में समझते हैं कि हरेक आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता कि हरेक आत्मा परमात्मा हो जाए? सबके संस्कार, सबके चेहरे मोरे अलग अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं? तो सब परमात्मा कैसे हो जाएंगे? लेकिन ये गायन किस समय का है? जो यादगार में चला आता है आत्मा सो परमात्मा, किस समय का है? जब संगम युग में सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो बताते हैं, गीता ज्ञान देकर, वो है साक्षात भगवान की गीता। क्या है? साक्षात भगवान की गीता, जिस गीता में बोला है ओरल गीता है या भगवान ने लिखी है। धर्म पिताएं भी ओरली बोलते हैं, बाद में शास्त्र बने। ऐसे ही भगवान ने आकर के गीता माता के द्वारा जो ज्ञान का गीत, ज्ञान की लोरी सुनाई, उस लोरी के बारे में बोल दिया। क्या बोल दिया? कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। आज में भी संस्कृत की गीता के श्लोकों का ही अर्थ सुनाते थे, जो आदि में सो अंत में, क्योंकि दुनिया के ऊपर, खास भारतवासियों के ऊपर गीता की जो छाप है, वो छाप अमित है। क्या कहते हैं गुरु लोग? कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को छोड़ने वाले नहीं है। उन शास्त्रों में एक ही शास्त्र है जिसका नाम साबित करता है कि भगवान का सुनाया हुआ गीता शास्त्र। शास्त्र माने शासन करने का विधान। श्रीमत, ऐसा विधान जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है, उससे जास्ती श्रेष्ठ मत कोई ने भी नहीं दिया। वो श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान आकर के सुनाते हैं। कौन सा भगवान? अर्जुन को सुनाते हैं। एक अर्जुन की बात नहीं, वो अर्जुन जो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, एक जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। तो सद्भाग्य देने वाला है क्या? बहुत भाग्यशाली है, है? देने वाला खुद भी तो भाग्यशाली होगा ना? है, है? अरे वो तो कहता है कि मैं भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूं, और आप कहते हैं प्रवेश करने वाला भाग्यशाली। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले जो गृहस्थी हैं, वो ज्यादा सुख भोगने वाले भाग्यशाली हैं, या निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी ज्यादा भाग्यशाली हैं? और भगवान आकर के अर्जुन जैसे गृहस्थियों को, प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान देते हैं, जो गुरुओं के सामने ये समझ बैठे हैं कि हम तो गिरी हस्ती है। क्या समझ बैठे हैं? हम तो गिरी हस्ती हैं, ये गुरु लोग बड़े पवित्र हैं। अपन को नीचे समझ बैठे और गुरुओं को देहधारियों को ऊंच समझ बैठे। तो भगवान जो भाग्यशाली बनाने की युक्ति बताने वाला है, खुद भाग्यशाली नहीं है क्या? भाग्यशाली बनाने की युक्ति बताने वाला है। वो आकर के कहते हैं ब्रह्मा के मुख से क्या कि बड़े ते बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी रायल पढ़ाई है। कौन पढ़ाता है? है जो बाप भी है वो एक ही है, बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। और फिर शास्त्रों में ये भी गायन है, तमेव माता च पिता तुमेव, तुम मने तू ही मेरी माता है। एक या दो चार, तुम संस्कृत में एक को कहा जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो कौन हुआ बताओ? कौन सा पार्टदारी है? कब का है? कब प्रत्यक्ष होता है और कब तक गुप्त पार्ट बजाता है? है यज्ञ के आदि में जिस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, क्या? जो जन्मरण के चक्र से न्यारा है और जो अखूट भंडार है ज्ञान का, उसका नाम नहीं दिया। नाम काम के आधार पर पड़ता है या ऐसे ही पड़ जाता है? तो वो काम करके दिखाया, उस काम के आधार पर नाम पड़ा क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करे। यज्ञ के आदि में भी उसने रौद्र रूप धारण किया था। पता है कब? है हाँ, यज्ञ के आदि में भी आ ब्रह्मा, उ विष्णु, मा महेश, तीन मूर्तियों के बीच शिव आते हैं। किसमें आते हैं? परम ब्रह्म में। किसमें? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी से बड़ी, परे से परे। ब्रह्म माने बड़ी मां। तो मां साकारी होती है या निराकारी होती है? साकारी होती है। जैसे धरणी साकार, और साकार धरणी में जो सूक्ष्म बीज है वो डाला जाता है, तो बीज भी सूक्ष्म से साकार बड़ा रूप धारण करता है या सूक्ष्म ही रहता है? है? बड़ा रूप धारण करता है। जैसे धरणी रूपी माता में बाप बीज डालता है तो जो अति सूक्ष्म सूक्ष्म है वो पिंड का रूप धारण कर लेता है धरणी के संयोग से। ऐसे ही सुप्रीम सोल जिसके लिए गीता में भी गाया हुआ है अणोअणियां सम्मन स्मरेते है, कैसा गाया हुआ है, अणु से भी अणु रूप है, अति सूक्ष्म रूप है। इतना सूक्ष्म रूप जो इन स्थूल आंखों से देखा ही नहीं जा सकता सिवाय ज्ञान चक्षु के। तो वो अनुरूप कौन आकर्षित करता है, है परम ब्रह्मा आकर्षित करता है। तो कौन हुआ आशिक और कौन हुआ माशूक, है शिवाशिक है, आशिक माशूक के पीछे दौड़ता है या माशूक आशिक के पीछे दौड़ता है, है आशिक माशूक के पीछे भागता है। तो पहला पहला आशिक है इस मानवीय षष्ठी रूपी विरंग मंच के ऊपर, कौन सुप्रीम सोल शिव, और माशूक कौन है पहला पहला परम ब्रह्म जिसके लिए वो आशिक है सुप्रीम सोल शिव ब्रह्मा दादा लेखराज के मुख से क्या कहता है, है? नहीं वो कहता है जो मेरे लिए माशूक है वो तुम सब बच्चों के लिए माशूक है, कौन है परम ब्रह्म जो हीरो पाटधारी बनता है तुम सबके लिए माशूक है, और तुम क्या हो ये पक्का पक्का याद कर लो, क्या है हम सब आशिक हैं और वो हमारा माशूक, उल्टा नहीं समझ लेना वो हमारे पीछे पीछे दौड़े, है गवर्नमेंट भी क्या समझती है, है गवर्नमेंट भी यही समझती है जैसे दुनिया में आशिक होते हैं तो जिसके ऊपर आशिक होते हैं उसको पकड़ करके बाह भगा ले जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन यहां तो रूह की बात है, देह की बात है ही नहीं। जो सारी मानवीय सृष्टि का माशूक है वो रूह है। कैसी रूह, रूहानी बाप का जो 100% रूहानी बाप है उस रूहानी बाप का 100% रूहानी बच्चा। अरे दुनिया में भी जो बाप होते हैं उनका बड़े से बड़ा बच्चा कोई होता है या नहीं, जो लंबे समय की प्योरिटी से जन्म लेता है, है जिसकी यादगार परंपरा चली आई है, भारत की हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए उन्होंने अपनी राजाई कौन से बच्चे को सौंपी, बड़े बच्चे को सौंपी। तो ये परंपरा कौन शुरू करता है, है शिव बाप शुरू करते हैं। शिव बाप रूहों के बीच में परे से परे रहने वाली रूह है और जो उसका बड़े से बड़ा बच्चा होगा वो भी मनुष्य शक्ति के बीच में परे से परे रहने वाला होगा, गुह्यात गुह्यतरम होगा, यह बड़े आसानी से सबको ही पहचान लेगा है। गुह्यात गुह्यतरम जो बड़ा बच्चा है सुप्रीम सोल शिव का, वो सभी मनुष्य आत्माओं का बड़ा भाई हुआ ना है, तो दादा हुआ ना, नहीं हुआ? और बाप शिव बाप, तो बताओ हमारा असली बाप दादा कौन कौन? शिव हमारा असली बाप, हम असल में आत्मा, नकल में मान बैठे थे कि हम देह हैं, असल में हम आत्मा, और हम आत्माओं 500-700 करोड़ के बीच बड़ा भाई क्या हुआ है? जो सुप्रीम रूह है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है, उसका बड़ा बच्चा दादा शंकर नहीं, शंकर याद का पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? तो जो पुरुषार्थी है वो बड़ा बच्चा कैसे साबित हो सकता है? क्या बड़ा बच्चा कब? जब वो योगी योग लगाते लगाते संपन्न स्टेज को प्राप्त कर ले। क्या कैसी संपन्न स्टेज है? नहीं, लक्ष्मीनारायण रचना है या रचयिता है? क्या है? 16 कला संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला है? तो बनाने वाला कौन, रचयिता कौन? रचयिता उससे कोई ऊंचा होना चाहिए ना। तो वो कौन जिसको कहा गया है इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा भगवान, ये तो ठीक है, दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, हर चीज। सुप्रीम सोल को इस दुनिया का कहेंगे? नहीं, उसके अलावा जो कुछ भी है इस सृष्टि में, जड़ या जंगम, चैतन्य या जड़ वस्तु है, वो सब चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज जो इस मनुष्य सृष्टि में सदैव है या नहीं, परंतु गीता में बोला है नाहम तेषु ते मै सृष्टि वृक्ष में, जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसमें मैं जड़ों में नहीं हूँ, तने में नहीं हूँ, टहनियों में नहीं हूँ, फलों में नहीं हूँ, फूलों में नहीं हूँ, परंतु वो सब मेरे अंदर है। कब की बात है? संगम युग में भी कब की बात? संगम युग 100 साल का, पुरुषोत्तम संगम युग कब से कहें? साधारण संगम युग कब से कहें? कब तक? और स्पेशल संगम युग कब से कहें? कब तक है? हाँ, जो मुरली में ही बता दिया शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से, क्या बताया? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, 66 की मुरली। तो कौन सा वर्ष आता है? 76 आता है। इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, लक्ष्मी नारायण, वो कब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? 76 से जन्म लेते हैं। नंबर वार पहचाने जाएंगे या एक साथ पहचाने जाते हैं? नंबर वार पहचाने जाते हैं, क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं पहचान करके भी फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। जो मुरली में ही बोला, लंबे समय से मेरे साथ रहने वाली आत्मा, वो भी बाप को भूल जाती है। तो जो भूलने वाले हैं वो बाप के बड़ल्ले बच्चे होंगे या बाद में पहचानने वाले? बाद में पहचानने वाले छोटे बच्चे हुए। तो ऐसे संक्षिप्तर से होता रहता है, कब तक? वो भी बता दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, कम से कम 40 वर्ष। माने तुम बच्चों में जो बड़े से बड़ा बच्चा है शिव बाप का रूहानी बच्चा, उसको कितना टाइम? 40 वर्ष लगता है। उस 40 वर्ष में कितने पहचानने वाले निकलते हैं? है 40 वर्ष के अंदर निकलते हैं कि 40 वर्ष के अंदर माया जो फाइनल परीक्षा लेती है उसमें सब खलास हो जाते हैं? है क्या होता है? आदि में क्या हुआ था यज्ञ के? एक आत्मा एक तरफ और सारा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ हो गया। नौ कुलियों के ब्राह्मण सब विरोधी बन गए, अनिच्छे बुद्धि हो गए, बाप को भूल गए, मर गए। हद की मौत या बेहद की मौत? बेहद की मौत मर गए। यज्ञ के आदि से ही ये शूटिंग पीरियड में मृत्यु लोक चला आ रहा है। कहां के वासी? मृत्यु लोक के वासी। जन्म भी लेते हैं फिर मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए गीता में लिखा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिनका जन्म होता है वो मृत्यु को भी पाते हैं इस दुनिया में। कौन सी दुनिया में? अमर लोक में नहीं, मृत्यु लोक में। तो ये 40 वर्ष होने तक, पूरे होने तक ये ड्रामा में नूद है। क्या क्या? कि सभी मनुष्य मात्र जो भी 500-700 करोड़ हैं, नंबर वार असत्य होने के कारण, असत माने झूठ होने के कारण मृत्यु को पाते हैं। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। आज बाप के सहयोग में संकल्प चलते हैं और कल क्या होने लग पड़ता है? विपरीत बुद्धि के संकल्प चलने लग पड़ते। संकल्प बीज है, बीज से शुरुआत होती है, फिर बीज ही बड़ा वृक्ष बन जाता है। संकल्प से वाचा में, वाचा से कर्मा में आ जाता है। तो देखो ये 40 वर्ष नुदे हुए हैं, दूसरी बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची, कब है? पहली बार कब रची है? जोर से बोलो। 36 में रची। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, 3 बार पसंद नहीं आई तो क्या कर दिया? बिगाड़ दी, नष्ट कर दी। सृष्टि रचना है या रचयिता है? हैं? रचना है। रचना को बिगाड़ दिया या रचयिता को भी बिगाड़ पाया? रचना को बिगाड़ दिया। तो देखो ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने बिगाड़ दी। 36 में पहली बार रची, पर कब तक बिगाड़ दी? अरे सब भूल गए। 46 तक सारी सृष्टि बिगाड़ दी। जिन बच्चों के लिए ब्रह्मा के मुख से बोला, ऐसे ऐसे बच्चे पावरफुल थे जो मम्मा बाबा को भी दृष्टि देते थे, ड्रिल सिखाते थे, उनमें शिव बाप प्रवेश करते थे, वो भी चले गए। तो ओमर आदि मम्मा और दादा लेख राज ब्रह्मा से भी ज्यादा पावरफुल थे या नहीं थे? थे। और आदि में पावरफुल तो अंत में भी पावरफुल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो पहली बार जो सृष्टि रची ब्राह्मणों की, वो 40 में बिगाड़ दी गई। और जिन्होंने बिगाड़ी बिगाड़ने में जो निमित्त बने उनका भी हवाला मुरली में दिया है। क्या स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? पहला निमित्त ब्रह्म, परम ब्रह्म का नाम नहीं लिया। कैसे? ब्रह्मा कैसे निमित्त बना? है जो भी ब्राह्मणों का संगठन चल रहा था उस संगठन को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ कराची में। हिस्ट्री बताती है यज्ञ की कि जब धोबी घाट को लेकर, बेहद का धोबी है ना, कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा के धोबी घाट को लेकर के जो यज्ञ कुंड में नीची कुरियों के ब्राह्मण भरे हुए पड़े थे, उन नीचे ब्राह्मणों ने यज्ञ के अंदर की बात को क्या कर दिया? बाहर भी शोट कर दिया। उस समय सिंध में बड़े बड़े धनाढ्य रहते थे, तो वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? है, उन्होंने भयंकर विरोध कर दिया। अंग्रेजी में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ब्राह्मणों की दुनिया में माता पिता के बीच हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली पहली पहली संगम युग की आत्माओं के बीच कौन छिटक के बाहर हो गया? ब्रह्मा वाली आत्मा जब देखा कि बड़ा संघर्ष का रूप लेने वाला है, तो ब्राह्मणों के संगठनों को छोड़ करके कराची में चला गया। परिवार का जो मुख्य सहयोगी है परिवार में, घर गृहस्थ में, गृहस्थ के मुखिया का मुख्य सहयोगी कौन होता है? माता। और वो ही जाकर के विरोधियों में जाकर के मिल जाए, या कोई ऐसा कर्म कर दे जिससे विरोधियों को पता चल जाए कि ये भाग गई, तो उनको शक पैदा होगा या नहीं? उन आत्माओं ने जो सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकार थे, उन्होंने एंटीओ मंडली बनाई और आक्रमण कर दिया। तो जिसका घर फूट गया हो, वो उस संघर्ष में स्थूल रूप में जीतेगा या हारेगा? हार जाएगा। परिवार की माता ही जब मुंह छिपा गई तो जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण थे वो सब एक तरफ हो गए, विरोधी बन गए और मुरली में आया रिजल्ट। के उसकी मुखिया की लाश गुम कर दी गई। क्या हुआ? लाश भी गुम कर दी, माना हत्या कर दी या जीवित दबा दिया है? हत्या कर दी। जिसकी हत्या कर दी जाए वो सूक्ष्म शरीर धारण करता है या साकार शरीर धारण करता है? है सूक्ष्म शरीर धारण करता है। सामान्य तौर पर यही नियम बनता है, लेकिन एक नियम और भी है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जैसे युद्ध भूमि में योद्धाएं लड़ते हैं और लड़ते लड़ते विजय की आशा में लड़ते लड़ते हम मारे जाते हैं, सर कलम कर दिया जाता है, तो उनके अंदर भाव क्या होता है? विजय का भाव होता है। और गीता में भी लिखा है, अर्जुन तू युद्ध करते करते मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर बच गया तो राजा ही भोगेगा। तो ऐसे ही हुआ। वो आत्मा जिसका कोई सहयोगी नहीं रहा तो भी क्या उसने हिम्मत तोड़ दी? है नहीं तोड़ी। हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा। ये गायन है उस समय का। उसने अंत तक हिम्मत नहीं हारी, अंत तक संघर्ष करता रहा। और उस समय भाव क्या रहा? देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। तो देह भले खलास हो गई लेकिन आत्मा के अंदर भावना क्या थी? है जो भी शिव बाबा का कार्य है उस कार्य को संपन्न करूंगा या बीच में छोड़ दूंगा। दुनिया वाले भी मानते हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं या तो कार्य को शुरू नहीं करती और शुरू करती है तो बीच में छोड़ती नहीं। तो वो आत्मा ये भाव लेकर के जाती है कि जहां कहीं भी जाकर के जन्म लूंगी इस जन्म के जो ब्राह्मण पने के संस्कार हैं और जो ज्ञान धारण किया है भले अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उस समय षष्ठी चक्र का पूरा ज्ञान नहीं था, चित्र ही नहीं बना था, बाद में बना। संदेशियों के साक्षात्कार से तो बताया वो आत्मा फिर जन्म लेकर के ब्राह्मण कुल में आती है, उसका पतन नहीं हो सकता। और बोला है मुरली में ही बोला है क्या, राम फेल हो गया, त्रेता वाला राम नहीं, कौन राम, राम शब्द का अर्थ ही है काम के आधार पर। रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। दुनिया की आत्माएं निराकार को याद करने में सहज अनुभव करती है, या जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुसार साकार को याद करने में सिद्धहस्त हैं, सहज अनुभव करती हैं। निराकार को याद करने में सिर्फ मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं जो बड़े सिद्धहस्त हैं। महामृत्यु के लास्ट में भी आते हैं तो भी याद में इतने फास्ट जाते हैं कि तीव्र गति होने के कारण अपने धर्म के ग्रुप की आत्माओं में सबसे आगे चले जाते हैं। इसलिए ग्रेट फादर्स गए हुए हैं। परंतु उन ग्रेट फादर्स का भी कोई बड़ा है जिसको बोला जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या बापों का भी बाप। मनुष्य सृष्टि में ये धर्म पिताएं बाप तो हैं, परंतु बाबा नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है। उनका ग्रैंडफादर भी कोई है जिसको वो मानते तो हैं एडम आदम के रूप में, लेकिन जानते नहीं है। तो शिव बाप मनुष्य आत्माओं के बीच में जो बड़े से बड़ा बच्चा है, उसके द्वारा परिचय देते हैं, सभी मनुष्य आत्माओं को परिचय मिलता है आगे या पीछे कि तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला कौन है, किसका परिचय देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देने वाला होगा, मल्टी मिलियनर बाप होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा,
और जो बाप होते हैं वो अपनी भी कमाई करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं ना? शिव बाप करता है या अकरता है? हैं? तो वो अकरता बाप जो करता बाप है, सुप्रीम करता, बड़े से बड़ा करता, उस कर्ता का परिचय देता है, रचयिता का परिचय देता है, सारी मनुष्य मात्र की जो रचना है उन सबको आगे पीछे परिचय मिलता है। और बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। निराकार बाप से क्या निराकारी ज्ञान का वर्षा चाहिए? निराकार बाप से क्या मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा? वो तो साकार है ही नहीं, निराकार है ज्ञान। तो ज्ञान का वर्षा भी निराकार सुप्रीम सोल से मनुष्य सृष्टि का जो बड़ा बाप है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली रूहानी मनुष्य आत्माओं के बीच उस बड़े बच्चे को ज्ञान का वर्षा देता है। जो बाप ब्रह्मा मुख से कहते, अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा के द्वारा कहलवाते, क्या मैंने बच्चों को सारा ज्ञान दे दिया, अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं, नंबर वार लेने वाले बच्चों ने ले लिया, और जितना जितना ज्ञानी होता है ज्ञान लेने में वो उतना ही बड़ा योगी बनता है। ज्ञान माने जानकारी, पहली पहली किसकी जानकारी? जो वर्षा देने वाला है, बेहद का बाप है, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है। इस दुखी सृष्टि से छुटकारा दिला करके अपने अंडर भी कंट्रोल ले लेना, अपनी राजधानी में ले लेना। राजधानी का मतलब ये राजा की धारणा शक्ति। क्या? जो राजा की धारणा शक्ति है उसकी गोद में दे देना। दुनिया में भी बच्चों को गोद लेते हैं तो मां की गोद में देते हैं ना, तो ऐसे ही जो राजधानी स्थापन करने वाला बाप है, नई दुनिया की राजधानी, सारी मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी, मोस्ट पावरफुल राजधानी, जिस राजधानी के संगठन को दुनिया के सारे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स टक्कर मारते रहे, लेकिन वो राजधानी टूटने वाली नहीं है। ऐसी राजधानी के गोद में पलने वाले नंबरवार बच्चे मनुष्य सृष्टि के बाप के समान नंबरवार ज्ञानी वर्षा देने वाले बाप को पहचानने वाले होंगे या बाप के अज्ञानी होंगे? पहचानने वाले ज्ञानी होंगे। जो पहचानने वाले ज्ञानी हैं, जिनके द्वारा पहली वहली मनुष्य सृष्टि की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन होती है, वो राजधानी 100% कंप्लीट होनी चाहिए या इनकम्प्लीट होनी चाहिए? 100% कंप्लीट राजधानी। और उस राजधानी में क्या क्या होता है नहीं मालूम। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन से कि राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए ना, कि महाराजा महारानी राजा रानी ही चाहिए तो राजधानी थोड़ा ही बन जाएगी। तो सब प्रकार के मन के, चाहे वो महाराजा बनने वाले हो, महारानी बनने वाले हो, महाराजा महारानी के परिवार में सहयोगी बनने वाले हो, संभालने वाले अधिकारी हो, चाहे उन महाराजा महारानियों के दास दासी हो, चाहे संभालने वाले अधिकारियों के दास दासी हो, क्या वो भी चाहिए? और राजधानी में जो सबसे नीचा पद है वो क्या है? चांडाल किस्म के लिए अब्बल नंबर के चांडाल चाहिए, जिनसे ऊंची कोटि के चांडाल दुनिया में कोई नहीं होते। वो भी चांडाल सूर्यवंशी कुल के चाहिए। क्या माला है? कितने मणकों की? 108 मणकों की माला, 9 धर्मों के 9 ग्रुप जो आस्तिक बन के हैं, उन 9 ग्रुपों में 9 प्रकार की एक संगठन है जो रतन कहे जाते हैं। एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं कि सब हीरे समान होते हैं? है कम वैल्यू के होते हैं। तो जो 12-12 के मुखिया हैं वो रतन हैं। क्या मुखिया हैं वो रतन हैं, और उन रतनों के भी ऊपर जो संगठन है, सबसे ऊंचा संगठन सूर्यवंशियों का, उन सूर्यवंशियों में 7 सूर्यवंश के हैं, 12 ही मड़के, 12-12 के 9 ग्रुप, 12 × 108, उनमें जो ऊंचे ऊंचे है सूर्यवंशी ग्रुप, उसमें 10 हैं जिनको भारतीय परंपरा में
भगवान के 10 अवतार बोला गया है। क्या कैसे अवतार? 10 अवतार। एक से एक पावरफुल। अवतार माने अवतरित होना, माने ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आना और प्रत्यक्ष होना। जैसे बच्चा माता के गर्भ में पहले बीज रूप स्टेज में आता है, ये है ऊंची से ऊंची स्टेज, फिर बाद में साकार बनता है, दराशाई हो जाता है, वो है नीचे से नीचे स्टेज। कहते हैं प्रत्यक्षता रूपी बच्चे ने जन्म लिया। क्या प्रत्यक्ष हुआ या नहीं? प्रत्यक्ष हुआ। तो ये भी ऐसे ही है कि जो 10 हैं, सारी सृष्टि के सूर्यवंशी बीज वो सभी धर्मों के माताएं हैं, बाप हैं, या बापों के बाप हैं, मंथन करना है। क्योंकि सृष्टि के आदि से ही जब लंबी लंबी एज होती थी मनुष्य आत्माओं की, देवताओं की, तो बाप भी जिंदा रहता था, बाबा भी जिंदा रहता था और परबाबा भी जिंदा रहता था। ये परंपरा द्वापर तक भी चलती रही। अभी तो एवरेज एज ही कम हो गई, क्योंकि 84 जन्मों में आत्माएं सुख भोगते भोगते कमजोर हो गई, तो उनका शरीर रूपी वृक्ष भी कमजोर हो गया। तो सृष्टि के ठेठ आज में पुरुषोत्तम संगम युग के स्वर्णिम काल में जब माला तैयार हुई थी, भगवान के गले का हार बने थे, प्रैक्टिकल में भी ऐसा काम किया होगा जो गले के हार बने हो, है? संबंध जुड़ते हैं तो कोई कोई संबंध ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में गले का हार बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम युग में भगवान से शुरू होती है। दुनिया की सारी परंपराएं, खास भारतवासियों की और आम सारे विश्व की सारी परंपराएं भगवान बाप से शुरू होती है। इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसर्व। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब प्रकार के मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते मेरे रास्ते के रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जो रास्ता मैंने चला दिया उसी रास्ते पर सब चलते हैं। कोई भी परंपराएं उठाई जाए, जिन परंपराओं का जिक्र बाबा ने अपनी वाणी में किया है, क्योंकि भगवान बाप जो भी सुनाते हैं वो शास्त्रों का भूसा उठाते हैं या सार की बातें उठाते हैं? है, सार की बातें उठाते हैं, चाहे वो माँ काया दादा लेखराज ब्रह्मा का मुख हो, उस मुख के द्वारा शास्त्रों की बात उठाई हो, चाहे वो यज्ञ के आदि में बीज बोने वाला बाप हो, उसके द्वारा भी शास्त्रों की जो बातें उठाई गई हो, जो वाणी प्रायः लोप हो गई, क्या जमीन दोज हो गई, सुना है क्या है? पुरानी पुरानी जो वाणियां थी पीयू की, उनको क्या किया? जमीन दोज कर दिया। भारत की हिस्ट्री भी यही कहती है, आतताई विधर्मी इस्लामी मुस्लिम आए, उन्होंने हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके भाड़ में झोंक दिया, नदियों में बहा दिया, जमीन में गाड़ दिया। तो ब्लड ड्रामे में जो कुछ भी होता है वो शूटिंग पीरियड में होना चाहिए या नहीं? तो इस ज्ञान यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है 10 वर्ष के अंदर, 36-37 से लेकर 40-47 के अंदर, वो शार्ट में सारा रिपीट हो गया। वो ब्राह्मणों की पहली स्थापना भी हुई और पहला विनाश भी हुआ। 36 में स्थापना हुई, 42-45 के बीच विनाश हुआ, फिर 47 में शुरुआत हुई। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ वो तन कितने साल का होना चाहिए? वानप्रस्थ 60 साल का होना चाहिए। तो उस समय दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु 60 साल थी, उसमें शिव ने प्रवेश किया, नाम दिया ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा के द्वारा दूसरी बार सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्राह्मणों की सृष्टि का। और वो सृष्टि कब से विघटन होना शुरू होती है? है वो ब्राह्मणों की सृष्टि विघटित होती है या नहीं होती है? कब से? है 76 से, जब से बताया पुरानी दुनिया का विनाश, मुर्नु में ही बोला, क्या बोला? पुरानी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना होगी, अगर न हो तो मेमोरेंडम राष्ट्रपति को भेजा गया था, जो मेमोरेंडम लिखित रूप में बाद में भ्रष्टाचारी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ के पैसे दे करके क्लर्कों को खलास कर दिया गया।
परंतु वो बात तो ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपी है कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। मुरलियों में भी छपा हुआ है, जो माउंट आबू से छपी हुई मुरलियां हैं। अच्छा, वो मुरलियां तो शास्त्र हो गए क्योंकि मनुष्यों ने छपाए। जो ब्रह्मा मुख से बोली हुई आदियों वाली वाणी है वो तो ओरिजिनल है ना, तो वो तो पक्का प्रभु है। उसमें भी ये बात साबित होती है कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। इसके अलावा जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए गए थे मुख्य, उन चित्रों में जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसके नीचे भी लिखा हुआ है पुरानी दुनिया का विनाश 10 वर्ष में और नई दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तो कब हुआ है? हाँ, वहां ब्राह्मणों की 40-47 में दूसरी बार षष्ठि रची गई, वो भी खलास हो गई। खलास हो गई या अभी भी चल रही है? है, अभी भी चल रही है। उनके लिए चल रही है जो आज बाप के बच्चे बनते हैं और कल मर जाते हैं या मर जाने वाले हैं। उस आत्मा के लिए नहीं जिसके लिए गायन है आप मुए मर गई दुनिया। उस ब्राह्मणों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। क्या? कोई लेना देना नहीं, कोई महत्व नहीं। आज नहीं तो कल क्या होने वाली है? खलास होने वाली है। और ये बात ब्रह्मा के मुख से मुरलियों ने ही बोल दी। याद है क्या बोला था? बोला था तुम बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम नहीं लिखना, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना। ये बात मुरली में ही बोल दी। फिर कोई कुछ कर नहीं सकेंगे, नहीं तो तुमसे आके लड़ेंगे। तुमने हमारी संस्था का नाम क्यों रखा? हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और बाप ने मुरली में बताया ये तो ईश्वरीय परिवार है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। क्या? सारी वसुधा के मनुष्य मात्र इस परिवार के आज नहीं तो कल क्या बनने वाले हैं? भांति बनने वाले हैं। इसलिए ये परिवार है बेहद का, और परिवार कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होता। दूसरी बात, हमारा ईश्वरीय परिवार है।
क्या श्रेष्ठाचारी परिवार है? कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण? गीता में लिखा है अन्नात भवति भूताने। क्या भूत माने प्राणी? प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी, और इसे ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न जो ताकत देता है, किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद, जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात भवति भूताने, उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। तो 75 से ये तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, जिस सृष्टि में एक पेयर पहले प्रत्यक्ष होता है। क्या नाम? लक्ष्मी नरेंद्र। एक जोड़े को छोड़ करके बाकी सब के लिए संघ 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया।
क्या
क्या मतलब? कि मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, क्या? नर से नारायण। कैसा वर्षा लेने वाला? नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर। ऐसा वर्षा लेता है जो जन्म से ही ज्ञान जल में रहता है, ज्ञान जल के बाहर जाता ही नहीं। भक्ति मार्ग में कौन सा चित्र दिखाया जाता है? है विष्णु क्षीर सागर में दिखाते हैं, ज्ञान जल में ही रहता है, अज्ञानता में कभी आता ही नहीं। तो मानसी सृष्टि के आधार पर, संकल्पों की सृष्टि के आधार पर श्रेष्ठ ज्ञान युक्त संकल्प आने के आधार पर दुष्ट अज्ञान युक्त संकल्प न रहने के कारण नई ब्राह्मण सृष्टि का उदय होता है, और पुरानी ब्राह्मणों की सृष्टि का नाश होता है। कौन से ब्राह्मण? मुखवंशावली नहीं, कुखवंशावली ब्राह्मण। कुख माने गोद। देह का हिस्सा है या नहीं है? है, देह का हिस्सा है। ऐसे ब्राह्मणों का विनाश होता है, उसे एक आत्मा की दृष्टि में आप मुए मर गई दुनिया। किसका विनाश होता है? जो मुख को महत्व नहीं देते। ब्रह्मा का वो मुख जिस मुख को सुप्रीम सोल बाप लेता है, उस मुख को महत्व, मुख की वाणी को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? है? हाँ, सारे शरीर को महत्व देते हैं। इतना महत्व देते हैं हुजूम के हुजूम। सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ करके जो भी दूसरे दूसरे वंश के हैं, चाहे ब्रह्मा वंशी हो, वो ब्रह्मा वंशी जो सूर्यवंशियों में कन्वर्ट भी नहीं होते, क्या सारी सृष्टि किससे पैदा हुई? ब्रह्मा से पैदा हुई। उस ब्रह्मा की सृष्टि में भगवान ने बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। जो ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूं, उस सृष्टि में चार वर्णों को देखता हूँ, उनों के गुणों के आधार पर, उनों के प्रैक्टिकल कर्मों के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर, अभी अभी देखता हूँ और देख करके उनकी रचना कर देता हूँ कि ये आत्माएं सतयुग के सूर्यवंशी देवताएं बनेंगे, ये आत्माएं 14 कला संपूर्ण त्रेतायुगी क्षत्रिय वंश के बनेंगे। पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले बनेंगे, छात्र तेज वाले। कैसे तेज वाले? छात्र तेज वाले। सीढ़ी के चित्र में देखा होगा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण को कोई छत्र छाया नहीं है, नहीं। और त्रेता में राम सीता को छत्र छाया है। कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है कि संगम युग में आदि से लेकर के अंत तक वो राम सीता वाली आत्माएं जो सूर्यवंशी गाई हुई हैं, उनके ऊपर छत्र छाया रहती है। किसकी छत्र छाया है? सुप्रीम गॉड फादर की छत्र छाया आज से लेकर के अंत तक छत्र छाया रहती। वो आत्मा मुकर्रर रथ है, आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। कैसा मुकर्रर? जिसके लिए बोला वो बाप भी है, बीज बोने वाला, माता भी है, ब्राह्मणों की पालना करने वाली, उत्तम पालना। जो पालना कोई कुमार नहीं कर सकते, अधर कुमार नहीं कर सकते, कोई भी पुरुष मात्र नहीं कर सकते, वो सहन शक्ति के आधार पर नंबरवार माताएं ही कर सकती हैं। तो वो अव्वल नंबर माता है कौन है? जिसको मनरूपी घोड़ा बताया है, बैल बताया है, जो मनरूपी बैल क्या है, है? अगर उस पर बुद्धि की लगाम न लगाई जाए, त्रिनेत्री तीसरा नेत्र जिसका गायन है, वो प्रैक्टिकल में लगाम न लगाए उसके ऊपर, तो कभी भी विश्व विजयी नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। क्या? मन जीते जगत जीत। वो मन कहो, वो बैल कहो, उसको कंट्रोल करना, या कंट्रोल करने में योग बल के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, वो अव्वल नंबर किसका कर्तव्य है? मनुष्य सृष्टि के बाप का कर्तव्य है। क्या? बैल पर सवारी करके दिखाई, लेकिन अभी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? है? बैल शंकर पर सवार है। वो बैल क्या है? वो बैल वो ही है जो महाभारत और भागवत में कृष्ण के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। बताओ कौन है? 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 महाभारत और भागवत में ब्रह्मा का नाम दिया हुआ है, बलराम। बलराम किसको कंट्रोल करता था? है? कृष्ण को। कृष्ण को भगवान बता दिया ना, उसको कंट्रोल करता था। और जो शिव महापुराण है उसमें भी शिव शंकर को किसने गले से पकड़ा हुआ है? है? वासुकी ने। वासुकी नाग नागों का राजा, जो नाग काम विकार में बड़े तीखे होते हैं, विषयी, विषयी विकारी, उनका मुखिया क्या दिखाया है शंकर के गले में? है? बांध के रखा हुआ है। शंकर वाली आत्मा भारत का पाटधारी है, जिस भारत में आज भी टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, लेकिन टाइगर ज्यादा पावरफुल होता है या बबर शेर लायन ज्यादा पावरफुल होता है? है? बबर शेर ज्यादा पावरफुल होता है। तो बताओ
ये बैल कौन हुआ? ये बबर शेर भी है जिसकी देवी सिंहवाहिनी दिखाई जाती है। क्या क्या दिखाते हैं? सिंहवाहिनी। और दूसरी देवी का नाम बाघम्बरी। बाघ माने टाइगर। तो जरूर जब लाइन और बाघ में कभी तो युद्ध होता है, हैं? तो जब युद्ध होता है तो कौन किसके ऊपर विजयी होता है? बाघ विजयी नहीं होता आमने सामने की युद्ध में। कौन विजयी होता है? है लाइन, बड़े मोहड़े वाला, पतली कमर वाला, वो विजयी होता है। तो वो युद्ध अभी चल रहा है। क्या क्या युद्ध चल रहा है? है वो लाइन ने जिसको अकल कम है। क्या कैसा खूंखार जानवर, अकल में टाइगर के मुकाबले तीखा है या कमजोर है? कमजोर है, लेकिन पहलवान बड़ा भारी है। संसार रूपी जंगल का राजा है, इसलिए कहते हैं रामायण में राम भगवान जिनको कहा जाता है, उन्होंने जंगल के राजा का आसरा लिया। किसका? जंगल का राजा उस समय जो हनुमान था, उसको अपना दोस्त बनाया और रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। ये शूटिंग अभी हो रही है या नहीं हो रही है? उस नाग का नाम, उस बबर शेर का नाम, उस बैल का नाम, वासुकी दिखाया गया है। वासुकी, बा में एक मात्रा बढ़ी हुई है बच्चे के अर्थ में, जैसे वासुदेव कृष्ण भगवान का नाम है, उसके बाप का नाम वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति देने वाला, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला। कौन? वसुदेव। कौन है? कौन सी आत्मा है वसुदेव? यादव कुल का है या दूसरे कुल का है? यादव कुल का है। और बाप भी कहते हैं, बाप इस समय विदेशी बनकर आया हुआ है या स्वदेशी बनकर आया हुआ है? यादव कुल का है या कौरव पांडव कुल का है? यादव कुल का है। मना धन संपत्ति दाता है। कौन सा धन संपत्ति? ज्ञान धन की संपत्ति प्रैक्टिकल में देने वाला है। शिव को प्रैक्टिकल में देने वाला मास्टर ज्ञान, सर्वशक्तिवान तो कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान शिव को नहीं कहेंगे। तो प्रैक्टिकल में देने वाला कौन मनुष्य शशि को है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा प्रैक्टिकल में देने वाला है। प्रैक्टिकल में वर्षा देता है
और प्रैक्टिकल में देवात्माओं को ही वर्षा देता है तो सारी मनुष्य शक्ति का बाप।
या सभी मनुष्य आत्माओं को नंबर वार वर्षा देता है वर्षा है बाप का। दो बेहद के बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो दो प्रकार के वर्षे देता है, दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा। महामृत्यु का समय होगा तो सभी मनुष्य आत्माएं, सबके लिए वो टाइम आएगा क्या जो गीत गाते हैं आज भक्त लोग, राम की शरण में आजा बंदे, क्या सारी मनुष्य सृष्टि को उस राम की शरण में आना पड़े। बाप कहते हैं राम वो नहीं त्रेता वाला, त्रेता वाला राम नहीं, वो राम जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। सत्य वृक्ष के जो मनुष्य सत्य क्या वृक्ष का जो रूप दिखाया है उसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उसकी याद में सभी आत्माएं जा रही हैं, उनको लक्ष्य मिला हुआ है सबको। मन मना भव, क्या लक्ष्य मिला है? मेरे मन में समा जा। किसने बोला? शिव बापा ने बोला या शिव बाबा ने बोला? बाप को तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है, वो तो असोचता है, उसे सोच विचार करने की दरकार है नहीं है? तो बताओ सोच विचार करने की दरकार किसको है? है सोच विचार माने मनन चिंतन मंथन करने की दरकार किसको है? अव्वल नंबर में मनुष्य सृष्टि के बाप को है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप का परिचय देता है, आत्माओं का बाप सुप्रीम ग्रैंडफादर, सुप्रीम गॉड फादर, ग्रैंडफादर नहीं, वो सिर्फ फादर है। वो परिचय किसका देता है? मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है। जो परिचय 84 जन्मों के चक्र में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जान पाती, उस 84 के चक्र में वो बाप शिव बाबा लगातार कायम भी रहता है तो भी कोई उसे पहचान नहीं पाता। उसकी पहचान कौन देता है? है उसकी बाप, उसकी पहचान शिव बाप देते हैं। जो ज्ञान का अखूट भंडार है जनमन के चक्र में नहीं आता है, वो पूरी पहचान देता है और दबाव देता है बच्चों पर, ब्राह्मण बच्चों पर। पहले क्या करो है? बाप का परिचय दो। ये बात सुनते हैं बार बार, ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी पढ़ते हैं सुनते हैं और हम बच्चे भी आज भी सुनते हैं, गहराई से क्लेरिफिकेशन सुनते हैं। टीचर का काम होता है क्या? प्रोज और पोएट्री को
डिटेल में समझाना, व्याख्या दे करके समझाना, व्याख्या के साथ जो समझाया जाए गहराई से उसी को ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो प्राइमरी स्कूल में वही कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के दोहे चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं, क्या उनकी डिटेल में व्याख्या बच्चे जानते हैं? जब बड़े होते हैं, ऊंची क्लास में जाते हैं, जहां टीचर बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है, ऐसे ही यहां ब्राह्मणों की दुनिया में जो ऊंची पढ़ाई है, एडवांस पढ़ाई ज्ञान की, उसमें टीचर भी बदल जाते और स्थान भी बदल जाता, और पढ़ाई पढ़ाने वाला जो टीचर है, जिसके लिए बोला, वो बाप भी है, क्या वो एक ही टीचर है, और अंत में भी वो एक ही सदगुरु है, सदगति करने वाला, सारी मनुष्य सृष्टि का सदगति करने वाला, जिसके लिए गायन है सच्चा सदगुरु शिव भगवान। जब सदगुरु मिला दलाल, दलाल साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो वो दलाल के रूप में जो अंत में सदगुरु प्रत्यक्ष होगा, 500-700 करोड़वी मनुष्य आत्मा को भी सदगति देगा, कम से कम एक जन्म की। वो सदगुरु आदि में भी एक ही था, ब्राह्मणों की दुनिया में। सन 47 में इसी सृष्टि पर था, 76 में भी इसी सृष्टि पर होता है, वो एक ही होता है, और 40 वर्ष पूरे होने पर जो बोला, तुम तमो प्रधान बच्चे नंबरवार सत्व प्रधान बन जावेंगे, उस समय भी वो एक ही है। जब छोटी सी छोटी संपन्न राजधानी स्थापन होती है, क्या छोटी सी छोटी 100% संपन्न राजधानी कौन से वंश वालों की होगी? पक्के सूर्यवंशियों की राजधानी। कैसे पक्के? पास विदानर, क्या आनर, धर्मराज भी उनको आनर देगा, क्या उनकी धुनाई पिटाई नहीं करेगा, डिसरिगार्ड नहीं करेगा, ऐसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन को नई दुनिया का कैपिटल का फाउंडर कहा जाता है, जो भक्ति मार्ग में शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। कितनी मूर्तियां? अष्टमूर्तियां कहां दिखाई जाती है? हैं? दिशाओं में दिखाई जाती हैं। अरे दिशाओं के मालिक तो बाद में बनेंगे, हैं? पहले हैं? बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, कोई भी बाप के बहुत प्यारे बच्चे हो, चाहे वो गंगा बच्ची हो और चाहे वो प्यारे बच्चे हो, बाप जब उन प्यारे बच्चों के लालने में पालना के बुद्धरूपी पांव को देख लेते हैं कि इन बच्चों ने मेरे को पहले पहले पहचाना, क्या 33 करोड़ देवताओं ने नहीं पहचाना, मनुष्य मात्र ने नहीं पहचाना। कितनों ने पहचाना? जिन 8 बच्चों ने पहचाना, उनमें कोई गुण है या नहीं है? विशेष गुण क्या देखते हैं? है बाप की पहचान का गुण देखते हैं। उन बच्चों ने बाप को नंबरवार पहचान लिया। किस आधार पर पहचाना होगा? ज्ञान के आधार पर पहचाना। ठीक है, गीता में तो कहा है क्या इस दुनिया में नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इस दुनिया में विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समय सिवाय कुछ भी पवित्र नहीं है। कौन सा ज्ञान? देहधारी मनुष्यों का ज्ञान नहीं, सुप्रीम सोल बाप के ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं, और वो भी ज्ञान जो पतितात्माएं हैं उनमें कैसे आता है? हाँ, पतितात्माएं जो आत्मा रची पची है पतित अंगों का सुख लेने में, जन्म जन्मांतर की रची पची है, वो अंतिम जन्म में भी उसमें कौन सी रग रहेगी? है? अरे अनेक जन्मों का जो अभ्यास है वो रग रहेगी या दूसरी रग रहेगी? वो ही रग रहती है। इसलिए बोला ज्ञानाध्यानम विशेषते। क्या ज्ञान तो सबसे पवित्र वस्तु है ही, लेकिन ज्ञान से भी जानकारी जो बाप की हुई जानकारी, ऊंचते ऊंच की जो जानकारी सृष्टि में हुई, क्योंकि ऊंचते ऊंच और नीचते नीच कहां का गायन है? साकार सृष्टि का गायन है। इस साकार सृष्टि में ऊंचते ऊंच की जो जानकारी हुई उससे योग लगाएंगे, याद करेंगे, तो क्या होगा? संघ का रंग लगेगा। याद कब आती है? कोई चीज देखते हैं तो याद आती है, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो याद आती है। यहां तक कि याद का इतना प्रभाव है कि दुनिया की हरेक स्त्री जीवन भर जिस पुरुष अंग को याद करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सुख अनुभव किया, तो अंत समय वो ही याद आता है और अंतमते सोगते हो जाती है। उस स्त्री को पुरुष का जन्म मिल जाता है, ऐसे ही पुरुष के लिए है। इतना प्रभाव है याद का, लेकिन वो याद भी इतनी तीखी और इतनी गहरी कैसे होती है? जो अंत में वो ही याद आता है और दूसरा कुछ याद नहीं आता है।
हाँ,
वो प्यार कैसे पैदा होता है वो भी गीता में बताया, संगात संजायते कामा, संग करने से क्या वो देहधारी का देह की इंद्रियों का संग करने से क्या होता है, संजायते कामा, चाहना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, इच्छा शक्ति पैदा होती है और वो इच्छा शक्ति बार बार याद दिलाती है। ये भी जानते हैं कि द्वापर युग से देवताएं पावन से पतित कैसे बने है? बिना याद के है? बिना याद के पतित बने, याद से ही तो पतित बने। किसकी याद, विविचारी याद या अविविचारी याद? विविचारी याद, जो भी इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भारत में आए, उन्होंने वाचा से सुनाया उल्टा पलटा ज्ञान, भारतीय परंपरा के ज्ञानी की बातें सुनाई। तुम्हारा राम भगवान ऐसा था जिसकी सीता चुराई ली गई, ऐसा कमजोर राजा। तुम्हारा कृष्ण भगवान कैसा था, 16,000 रानियां रखता था। बताओ, इतना विभिचारी और वो तुम्हारा भगवान, ऐसी ऐसी ढेर की ढेर ग्लानी की बातें सुनाकर कन्वर्ट करते जाते थे। इसलिए बाप ब्रह्मा वो से कहते हैं क्या, जो खास बात है ध्यान में रखने की वो बात है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, जिस एक को बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हमने अनुभव कर लिया, जान लिया कि वो एक ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसी से सुनना चाहिए। औरों से सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे द्वापर युग से देवात्मा विभिचारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की बातों के संग के प्रभाव में आ गई, और प्रभावित माने क्या बन गई, प्रजा बन गई। तो पतितों के संग के रंग में आने से और अनेकों के संग के रंग में आने से विचारी बन गए, पतित बन गए, नीचे गिर गए। तो ऊपर उठने के लिए उल्टा कर दो, क्या करो है? अरे किसी एक को याद करें, कोई को पकड़ ले है? जो भी धर्म गुरु मिले, धर्म पिता मिले, कहीं शिवो हम और पकड़ के बैठ जाएं है? नहीं, क्या करें है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप को पहचाने, जो पहचान हमें सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान मिलती है। मिलती तो है, लेकिन ये पकड़ कोई की बुद्धि में नहीं आती। ब्रह्मा कुमारियां भी आज तक क्या कर रही हैं? बाप का परिचय देना है पहले पहले, तो क्या करती है, 32 करोड़ वाला है जो निराकार का चित्र है
वो पहले सामने रख देती है। समझती है हमने बाप का परिचय पहले पहले दिया, हम श्रीमत को फॉलो करने में नंबर वन है। उनसे पूछा जाए कि जो 32 गुण हैं, ये गुण निर्गुण के हैं या कोई साकार है सगुण, उससे क्या गुण है? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार आत्मा में होते हैं? साकार में होते हैं। वो साकार को पहचानती नहीं, जिस साकार के चित्र दुनिया में सबसे जास्ती ताकत तादाद में मिलते हैं, जिस साकार के चित्र दुनिया की देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में निकाले गए, और जो भारतीय परंपरा में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? है शंकर के मंदिर बने हुए है। शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है। जो पुरुषार्थी है वो पुरुषार्थ कराने वाला है या करने वाला है? है करने वाला है, कराने वाला तो नहीं है। है पतित है या पावन है? वो भी तो पतित ही है ना, नहीं तो याद में क्यों बैठा है? तो शंकर भी बल देवताओं में बड़ा देवता है, लेकिन जब तक याद का पुरुषार्थ करता है तब तक भगवान भगवान नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं है। कब है? कब है ऊंचे तो ऊंचा भगवंत? जब 100% पक्का योगी बने। कैसा पक्का योगी? ऐसा पक्का योगी जो इंद्रियों में प्रबलतम इंद्रिय है, कौन सी? कामांग, उसको जीतने वाला बने। जो गाया जाता है, इंद्रिय जीते जगत जी, काम जीते जगत जी, कैसे जीता हम जीतने वाला बनता है? वो युक्ति क्या है? अरे युक्ति बताने वाले ने उसे कोई युक्ति बताई? अरे याद की युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? किसको याद करने की? अरे हैं? शिव को याद करने की। उसकी यादगार मंदिर में क्या है? शिवलिंग। शिव तो ब्रह्मा के मुख से कहता है न मैं पूज्य बनता हूं और न, तो झूठ क्यों बोलते हैं? कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो निराकार, जो सदैव निराकार है, इस साकार सृष्टि में साकार पतित तन में आता है तो भी निराकार है, आज भी है कल भी रहेगा और पास्ट में भी था, सदा काल है, सदा शिव कहा जाता है। वो योगी है या त्रिकालदर्शी ज्ञानी है, ज्ञान का अखूट भंडार है या योग का अखूट भंडार है? ज्ञान का भंडार है, वो निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप है,
उससे निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है, उस ज्ञान के वर्षे को जो रूहों के बीच बड़ा बच्चा संपूर्ण ज्ञान का वर्षा धारण करता है। कैसे धारण होता है? ज्ञान का वर्षा संपूर्ण धारण हो उसकी युक्ति बताइए। है
अरे
युक्ति बताई, अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्या अपनी घोट तो नशा चढ़े। मिसाल दिया, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देते रघुवीर, बताया मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो तुलसीदास ने कितने किसकी कहानी लिखी है? राम की कथा कहानियां लिख दी। तुलसीदास की आत्मा राम वाली आत्मा साबित होती है। वो क्या करती है ऐसा, जो सारा ज्ञान धारण कर लेती है।
अरे अभी तो बोला
अपनी गोट तो न सचड़े, जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, जैसे गाय जैसे बंदर जो कुछ खाता है उसको गाले में भर लेता है और सारा दिन चबाता रहता है, गाय भी क्या करती है, खाया हुआ निगल जाती है या सारा दिन चबाती है। तो ऐसे ही जो आत्माएं भक्ति मार्ग की तरह एक घंटा मुरली सुन लिया और जैसे भक्ति मार्ग में सभा में जाते हैं पंडित जी की और वहीं झाड़ के चले आते हैं, बाकी सारा दिन अपने धंधे धोरी में बुद्धि लगी रहती है, वो मनन चिंतन मंथन जो चलना चाहिए वो नहीं चलता। इसलिए गीता में लिखा है कि जो ईश्वरीय धंधा है ज्ञान सुनने सुनाने का, इसके अलावा दुनिया के जितने भी धंधे हैं क्या, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा है? कौन से ज्ञान, कौन सी बात के सिवाय? ईश्वरीय ज्ञान के धंधे के सिवाय दुनिया के जितने भी धंधे हैं पेट के धंधे, वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए? ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, बाप ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है सुनना समझना और दूसरों को सुनाना कथा करना, और बच्चा चौराहे पे जाकर के चमड़े के जूते और चप्पल गांठने लगे तो बाप इसे बदनामी मानेगा या सरनामी मानेगा? तो बदनामी की बात हो गई। तो बाप का बच्चा जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा होना चाहिए, और जितना परसेंटेज में बाप का धंधा करेगा उतना परसेंटेज में जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेगा। क्यों? क्योंकि पेट का धंधा, देह का धंधा, देह विनाशी तो धंधा भी, चाहे कितना भी अरबपति हो जाए फिर भी देह छूटी और अरब खरब सब सब खलास, और आत्मा आत्मा अविनाशी। आत्मज्ञान और आत्मा के बाप का ज्ञान वो अविनाशी है। क्या? अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? प्रूफ क्या है? हा? अरे प्रूफ है, जो आत्मा रूहों के बीच में बड़ी रूह, जिसे मुसलमान कहते हैं जबराइल, क्या जबरदस्त आयल, ज्ञान का तेल, वो जबराइल बड़ा फरिश्ता मानते हैं, दूसरे धर्म वाले भी। वो देवताओं को नहीं मानते, किसको मानते हैं? फरिश्तों को, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और भारत में देवताओं को मानते हैं, इसलिए गीता में लिखा है जो मेरे पुजारी हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं के पुजारी हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेतों के पुजारी हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेत कौन बनते हैं? चंद्रवंश से लेकर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन हो, जो भी वंश वाले हैं, चाहे वो धर्म पिताएं हो चाहे उनके फॉलोअर्स हो, वो सब भूत प्रेत बनते हैं। क्यों? क्यों बनते हैं? भूत प्रेत वो बनते हैं जो बहुत पाप करते हैं, वो हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो महापापी बनते हैं, अकाले मौत होती है तो भूत प्रेत बनते हैं, और वही आत्माएं बनती हैं जो संगम युग में सुप्रीम सोल बाप आकर के जो ज्ञान सुनाता है उसे ज्ञान की अवहेलना कर देती हैं। क्या? जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है उस शरीर की परवरिश में लगी रहती है। क्या? किस ज्ञान में लगे रहते हैं? भौतिक ज्ञान में लगे रहते हैं। पंचभूतों के ज्ञान को ही दुनिया का बड़ा ज्ञान समझते हैं। आत्मा का पता ही नहीं, महत्व भी नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर। क्या? आत्मा के अंदर की बात सिवाय आत्माओं के बाप के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता। तो न आत्मा को जानना चाहते, न आत्मा के बाप को जानना चाहते। खास भारत में ऐसे हैं कुरु की औलाद। क्या? क्या नाम? कौरव एकमात्र बढ़ गई। कुरु का नाम ही पड़ता है करो। क्या? इस शरीर से करो। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। माना वो पूर्व जन्मों को मानते ही नहीं। पूर्व जन्मों के हिसाब से प्राप्ति होती है, इस ये बात उनकी बुद्धि में आती ही नहीं। आती है इस्लामी बौद्धियों की बुद्धि में ये बात आती है, है? वो मानते ही नहीं पूर्व जन्मों को। तो ऐसी आत्माएं जो आत्मज्ञान से संगम युग में वंचित रह जाती है, वो सब पढ़ाई से वंचित रह जाती है, ईश्वरीय पढ़ाई से। जो पढ़ाई शांति के टाइम अच्छी होती है, यह दुनिया में जब अशांति भगदड़ मच जाती है तब अच्छी पढ़ाई हो सकती है, वो शांति का टाइम गमा देती है। ये शांति के टाइम पर पढ़ाई पढ़ने का लाभ बाप बताते हैं, तुम बच्चे लेते हो। तुम किसको को आ जाता है? जो सन्मुख हैं उनको तुम कहा जाता है। सन्मुख का मतलब स्थूल मुख के सन्मुख बैठे हुए नहीं, स्थूल में सन्मुख बैठे हैं और अंदर अंदर विरोधी संकल्प चल रहे हैं। मुख में राम, बगल में छुरी भरी हुई है, वो सन्मुख नहीं, अंदर और बाहर से एक। इसलिए मुरली में बोला है जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, परसेंटेज में ज्यादा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। मालन क्या दूर ही दूर रहेंगे। तो बताया कि वो बड़े से बड़ा बाप भी है, प्रैक्टिकल में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला, प्रैक्टिकल बना शरीर के साथ या बिना शरीर के, शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ, शांति का वर्षा। जो शांति बच्चों को बाप के घर में मिलती है, इसलिए कहते हैं घर को याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर कहते हैं माम एकम याद करो, ये दोरी दोरी बातें क्यों करते हैं? 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 हाँ, वो हमारा बाप भी है। कौन? वो हमारा घर भी है, वो हमारा स्वर्ग का वर्षा भी है, वो है, वो हमारा स्वर्ग का वर्षा है, आत्माओं का बाप। अरे वो खुद ही नहीं रहता स्वर्ग में, है? बाप खुद होगा मल्टी मिलियनायर तो बच्चों को देगा, बाप खुद ही जमींदार होगा तो बच्चों को जमींदार बाप का वर्षा देगा। बाप खुद प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होगा तो बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाएगा, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का वर्षा देगा। वो है, वो सबसे बड़ा सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग का जन्म जन्मांतर का पक्का है? है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है वो, है? वो तो दुनिया का बड़े से बड़ा सन्यासी है। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। क्या? सुख का भी त्याग, इंद्रियों का भी त्याग, राजाई का भी त्याग। क्या है फिर वो? क्या है? है? अरे ज्ञान का अखूट भंडार है, जो भंडार कभी खत्म खत्म नहीं होता। जो मनुष्यों का बाप, सारे भंडार को खींच लेता है और जिस बाप के अंदर से ये मनुष्य सृष्टि निकलती है और महामृत्यु के समय उसी में सारी सृष्टि क्या समा जाती है। जो गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, कहां से सारी सृष्टि निकलती है? अव्यक्त मूर्ति। कैसी मूर्ति? मूर्ति माने साकार। कैसी मूर्ति? जो अव्यक्त है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती। मूर्ति तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन उसमें आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? शंकर को दिखाई देती है। शंकर की मूर्ति में जो याद का पुरुषार्थी है, उसमें नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव सब दिखाई देते, और लिंग में दिखाई नहीं देते। तो वो अव्यक्त मूर्ति है, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में दिखाया गया था। क्या? भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है स्वर्णलिंग, सत्व प्रदान, रजत लिंग चांदी का, सत्व सामान्य, ताम्रलिंग रजो प्रदान, और लौह लिंग पत्थर लिंग। आज की दुनिया में शिव के मंदिर में क्या देखने में आते हैं? है पत्थर के लिंग। क्यों? कि दुनिया ही पत्थर बुद्धियों की बन गई। तो उन पत्थर बुद्धियों का भी कोई बाप होगा ना? है? होगा या नहीं होगा? वो होगा। उस पत्थर बुद्धि की बुद्धि में एक बात नहीं आती, सारा ज्ञान आ जाता है। क्या है? भगवान नहीं आता, वो ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं आता। क्या? जो स्वयं गीता का भगवान है, गीता पति भगवान, वो पति बनता है, है? जिसमें प्रवेश करता है वो गीता माता का पति बनता है या वो बनता है? उसका तो एक ही संबंध है। क्या? बाप और बच्चों का आत्मा आत्मा, भाई भाई, वो उनका बाप, कोई संबंध नहीं, ढेर संबंध है। जब साकार में आते हैं तो उस साकार स्वरूप के द्वारा अनेक प्रकार के संबंध इंद्रियों से जुड़े जाते हैं। संबंध बिना इंद्रियों के बनते हैं, बिना देह के बनते हैं, या देह के साथ बनते हैं? संबंध तो देह के साथ ही बनते हैं। देह की इंद्रियों से ही संबंध का सुख लिया जाता है, कोई भी संबंध हो। तो जो अनेक प्रकार के सर्व संबंध गाये हुए हैं एक भगवान के साथ, वो साकार रूप के संबंध हैं, निराकार के संबंध होते ही नहीं। तो बताया कि वो बाप सुप्रीम सोल जिस साकार में आता है, उस साकार आत्मा के द्वारा अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है इंद्रियों के द्वारा। उन इंद्रियों में सबसे जास्ती कशिश करने वाली इंद्रिय कौन सी है? आंख। तो बताता है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्या बताता है? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की दृष्टि से है, दीदी दादी दादाओं की दृष्टि से है, देहधारियों की दृष्टि लेंगे तो पतित बनते रहे हैं और फिर क्या बन जाएंगे? यहां भी पतित बन जाएंगे। इसलिए पहले पहचानना है क्या कि जो विदेही है आज भी विदेही, कल भी विदेही रहेगा, विपरीत देह के विदेही, पहले भी विदेही था, सदाकाल का विदेही, पतित तन में पतित दुनिया में आता है तो भी देह के संबंध से विदेही। उस विदेही को पहचानो, प्रैक्टिकल में पहचानो। क्या प्रैक्टिकल है? एवर प्योर। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य नंबरवार प्योर बनते हैं, देवताएं भी बनते हैं, लेकिन वो देवता नहीं। क्या देवताओं का भी रचयिता है? हेवनली गॉड फादर है या नहीं? हेविन का रचयिता, हेविन साकार या निराकार? साकार। तो उस बाप को पहचानो, वो बाप हमारा घर भी है। क्यों? क्योंकि उस बाप में बताया है मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, सृष्टि पर उतारेंगे कि पहले चैतन्य आत्मा में उतारेंगे? कोई चैतन्य आत्मा है मनुष्य आत्मा जो तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि जो एवर प्योर है आत्मा, आत्माओं के बीच आत्माओं का बाप, वो उसमें प्रवेश होता है और मुकर्रर रूप में प्रवेश होता है और प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है। आप समान माना 100% बनाता है या परसेंटेज में बनाता है? 100% बनाता है। क्या कैसा बनाता है? 100% बनाता है, आप समान एवर प्योर बनाता है। कैसे? कहता है मैं तो सर्वशक्तिवान तो हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिवान नहीं हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान मेरा टाइटल नहीं है।
तुम बच्चों का नंबर वार है तो एवर प्योर,
वो प्रैक्टिकल करता है, वो आत्मा है, वो करता है या करता है, वो तो करता है।
कौन करता है?
जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथधारी योग बल के द्वारा अपन को आत्मा समझ। क्या इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है साकार में, पहले वो पहचानता है,
कोई दूसरा पहचानेगा?
अपने अपने पार्ट को हर आत्मा पहले खुद पहचानेगी, तो कोई दूसरी आत्मा पहचानेगी?
खुद पहचानेगी।
तो वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी है वो अपने पार्ट को पहचानता है, और उस पार्टधारी को पहचान करके उस ब्रकुटे के मध्य में आत्मा को याद करता है। अपन को आत्मा समझ, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान कर उस स्वरूप को पहचान। कौन सा स्वरूप? अधूरा पुरुषार्थी रूप नहीं, जो हाथ पांव इंद्रियों द्वारा, हाथ पांव इंद्रियों वाला शंकर दिखाया जाता है, नहीं, वो तो यादगार जो शिव के मंदिर हैं, उन मंदिरों में बीच में मुखिया शिवलिंग और आसपास वो पुरुषार्थी देवताओं की मूर्तियां दिखाई गई, संगम युग की यादगार, उन मूर्तियों के बीच में पुराने मंदिरों में जैसा कंपिल में सौ रामेश्वरम मंदिर में देखा होगा, जो मुखिया है वो बीच में परिवार का मुखिया, और जो अन्य परिवार के भांति हैं वो नंबर बार बैठे हुए हैं चारों। देखा है? नहीं याद रहा? उस मंदिर में जो मुखिया बीच में है, मुखिया बाप परिवार का मुखिया, और माता जलाधारी ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली, क्या नाम दिया? जलाधारी। वो माँ के पिता जो मुखिया हैं परिवार के, उनके चारों तरफ दीवार में देवी देवताओं की चित्र दिखाई। मुख्य चित्र कौन सा दिखाया? नहीं याद, फिर जाके देखना। तो बताया जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग जिसकी पूजा होती है वो उसकी यादगार है, या मनुष्य शक्ति के बाप की वो यादगार है जो संपन्न रूप धारण करती है, उसकी यादगार? वही हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा सदगुरु भी है, तीनों एक ही पार्ट है, अलग अलग आत्मा नहीं है। इसके लिए बोला वो सुप्रीम टीचर बनकर के दुनिया की सुप्रीम पढ़ाई पढ़ाता है, बड़े से बड़ी पढ़ाई, बड़ी 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 तीन बार बड़ी। क्या रायल पढ़ाई पढ़ाता है?
अभी तो मंगुओं की पढ़ाई नहीं पढ़ाता क्या? और सब क्या है? जो भी देहधारी धर्म गुरु है पढ़ाने वाले वो सब है आप बिगम से जाते हैं भक्ति मार्ग। राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया जानते नहीं है वो एक राम इस शक्ति पर कौन है। उसका परिचय बाप देते हैं रूहानी बाप सुप्रीम सोल के रूप में बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ाता है। अभी सुप्रीम टीचर की बात बच्चों की बुद्धि में आ रही है, अभी आ रही है या संचक्कर से पहले भी आ गई थी? अभी कई दिनों से बाबा की वाणी में त्रिमूर्ति के ऊपर व्याख्यान दिया जा रहा है। क्या क्या दिया जा रहा है? व्याख्यान एक्सप्लेनेशन। जो व्याख्यान के लिए कौन सा मुनि प्रसिद्ध है? मुनि बने मनन चिंतन मंथन करने वाला कौन सा मुनि प्रसिद्ध है? कपिल मुनि सांख्य शास्त्र का प्रणेता। इसका प्रणेता सांख्य सह आख्या। जो कुछ भी सुनाए जो कुछ भी बोले वो डिटेल में व्याख्या कह के करके बोले। क्या साठ में बोल करके खत्म न कर दे। जब तक बुद्धि में समझने वाले की बुद्धि में बैठ न जाए तब तक व्याख्या चालू रहती है। द्वापर के आदमी व्यास बनकर नाम है वेद व्यास। बाद में बड़े बड़े जंगल होते थे उन जंगलों को अरण्य कहते थे। वहां बैठ करके जो बनाए गए शास्त्र वो अरण्य कहे गए। उनमें वेदों की व्याख्या हुई। फिर बाद में अरण्यक में से भी बाल में से खाली करने लगे। लोगों को प्रश्न पैदा होने लगे तो शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। बाद में उन ब्राह्मणों की व्याख्या निकली उपनिषद। क्या ऐसे नहीं समझेंगे? उपमाने नजदीक पास में, निषद माने बैठना। जैसे कठोपनिषद में एक गुरु है और एक शिष्य को बैठ करके समझाता है तब बात बुद्धि में बैठती है। ऐसे नहीं आज के गुरुओं की तरह हुजूम के बीच में सुनाई दिया और सृष्टि का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। भगवान की पहचान कोई को बुद्धि में बैठ जाएगी? नहीं। ऐसी बैठती है उपनिषद। गुरु के नजदीक अकेले में बैठ करके समझे तो मुरली में बाबा ने किस बात पर ज्यादा ध्यान दिलाया है? एक एक को बैठ पढ़े। अगर एक अनेकों को बैठ करके या दो चार को बैठ करके पढ़ाएगा तो दो चार में वाइब्रेशन जाएगी, दो चार में दृष्टि जाएगी, चाहिए कि नहीं? दो चार के कानों में द्विचारी भाषा जाएगी, क्योंकि हर एक मनुष्य की आत्मा अपने अपने तरीके से उठाती है, तो ज्ञान कैसा हो जाए? द्विचारी ज्ञान हो जाता है, कुत्ते कुतियों का ज्ञान हो जाता है। कुत्ते कुतियों की सच्ची कैसे होती है? द्विचारी होती है या एक ही एक से होती है? द्विचारी होती है, द्वैतवादी सृष्टि होती है। तो हम कौन सी सृष्टि बनाने वाले ब्राह्मण हैं? अद्वैत देवताओं की सृष्टि बनाने वाले, अद्वैत को देवता कहा जाता है। तो हम बाप को फॉलो करने वाले, बाप कौन सी सृष्टि रचता है? राक्षसों की सृष्टि बनाता है या देवताओं की नई सृष्टि बनाता है? हम भी बाप को फॉलो करते हैं, तो बाप दबाव देते हैं ब्राह्मण बच्चों को, क्या करो है? एक बैठ करके एक को समझाए, ये भी इशारा दे दिया कि कन्याएं माताएं कन्या माताओं को समझाए और पुरुष पुरुषों को बैठ करके समझाए, नहीं तो एक एक में भी दृष्टि का करप्शन हो जाता है। तुम बताया बेसिक नॉलेज में आज से ही इस बात का ध्यान रखा गया नहीं रखा गया, अभी भी नहीं रखा जाता, और एडवांस में है रखा जाता है। जो भी बच्चे नंबरवार माताओं के पेट से बुद्धि से जन्म लेते हैं, वो बच्चे एक से सुनते और बाप के घर में जन्म लेते हैं। जब तक बाप के घर में जन्म न लें, मनुष्य शक्ति का बाप विश्व पिता विश्व का मालिक है, जिसके लिए इशारा मुरली में दे दिया क्या बात के लोग मालिक को बहुत मानते, उनसे पूछो वो विश्व का मालिक साकार है या निराकार, मतलब बाबा का क्या है? विश्व का मालिक साकार होगा या निराकार होगा? साकार ही होगा। विश्व के मालिक जो ऊंचे थे ऊंचा है, जिसको बोला है ऊंचे थे ऊंचा भगवान, वो हमारा वर्षा देने वाला, ऐसा वर्षा जीवन मुक्ति का वर्षा, जीवन में रहते बिना जीवन के नहीं, जीवन में रहते सुख का वर्षा देने वाला, नाम मात्र भी जिसमें दुख का अंश भी न हो, नीचे से ऊंचा उसका वर्षा है, याद है उनका वर्षा है
जीवन मुक्ति
तो है। जीवन मुक्ति में भी कोई एक जन्म की जीवन मुक्ति लेते हैं, कोई अनेक जन्म की जीवन मुक्ति लेते हैं, कोई उससे भी ऊपर की जीवन मुक्ति लेते हैं, स्वर्ण संगम युग में कौन सी मुक्ति, कौन सी जीवन मुक्ति? अति इंद्रिय सुख की जीवन, जिसमें इंद्रियों से आत्मा अतीत हो जाती है, क्या जैसे मिसाल लिया है, यादगार बनाई है शिवलिंग, शिवलिंग भी वही कर्म करता है जो आज की दुनिया के भ्रष्टाचारी मनुष्य करते हैं। अंतर क्या है? जो वो सारी दुनिया में पूज्य है, मान्यता प्राप्त है, औरों को ये मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या खासियत है तुम्हें? इंद्रियों से कर्म तो करता है, भगवान का आदेश है कर्मयोगी बनना। क्या? कर्म इंद्रियों से कर्मधारा को तोड़ना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है, दूरबाज खुशबाज नहीं बनना है, साथ रहना है। लेकिन मन को, बुद्धि को, आत्मा को उपराम उपमने ऊपर जो गीता में लिखा है, उद्रेक आत्मना आत्मान। क्या? उपमने ऊपर, अरे तो मने हरण करके, जब खास भ्रष्ट दुनिया की जो विशेष भ्रष्ट इंद्रिय है, जन्म जन्मांतर जिससे सुख हो गए, वो कर्म करते समय मन को उस इंद्रिय से नीचे से निकालकर खड़े ऊपर ले जाए। क्या? कम से कम ये भी ऊपर है, कहां ले जाए? आत्म की स्थिति में ले जाए, उससे भी ऊपर ले जा सके तो कहां ले जाए? जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है उसकी याद में ले जाए तो क्या होगा? मन बुद्धि का, मन का संयोग नहीं होगा तो इंद्रिय अपने रस को भोग ही नहीं सके। मिसाल बाबा ने दिया है कई बार, क्या महबूब और महबूबा का, ऐसे ही इंद्रियों को उपराम बनाना है। अर्जुन कहता है बड़ा मुश्किल है, तो जवाब मिलता है अभ्यास है न तो कौन किए। क्या? बार बार अभ्यास करो, अखंड अभ्यास करो। क्या? खंडित होने वाला अभ्यास नहीं। आज अनिश्चय बुद्धि हुए, आज किया, कल अनिश्चय बुद्धि हो गए, छोड़ दिया, नहीं, पक्का निश्चय बुद्धि होकर के अभ्यास करो, अटूट अभ्यास करो। जो यादगार तुम्हारा है, अचल गढ़ है, गढ़ माने किला, ऐसी आत्माओं का किला जो अटल रहती है अपना संकल्प पर, अटल विश्वास लेकर के प्रयास करो। जैसे साइकिल पर चलने वाला बार बार गिरता है, छोड़ देता है, सीख करके छोड़ता है, तो ऐसे ही अभ्यास अनवरत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और निरंतर कब होगा? सहज कब होगा? सहज तब होगा जब साकार में वो निराकार आत्मा जो योगी बनकर, पुरुषार्थी बनकर इस निराकारी स्टेज में टिकती है, उसको पहचानेंगी। अब बल नंबर योगी बनकर योगी राज कही जाती है, योगेश्वर सनत कुमार कही जाती है, ब्रह्मा का सबसे बड़ा बच्चा कही जाती है, उसको फॉलो करना है। जो सुप्रीम बाप भी है, वर्षा देने वाली को बाप कहा जाता है, क्या आत्मा का बाप सुप्रीम सोल कौन तो वर्षा देगा
है?
निराकारी ज्ञान का वर्षा दे, तुम्हें कौन सा वर्षा चाहिए? तुमने जन्म जन्मांतर किसको पुकारा? हे पतित पावन आओ, यह ज्ञान देकर चले जाओ, क्या बुलाया? आओ और हम पतितों को पावन बनाओ। तो किसका दाइन है बताया? जो पतित से पावन बनते हैं वो मेरे को बुलाते हैं, अंदर की आवाज से बार बार बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। पतित पावन आओ, भक्ति मार्ग में ब्रॉड ड्रामा में बार बार बुलाया है हे पतित पावन आओ, तो शूटिंग पीरियड में रिहर्सल पीरियड में नहीं बुलाया होगा? किसने बुलाया होगा? किसने नहीं बुलाया? जो पतित से पावन बनते हैं उसकी अंदर से ये बार बार आवाज आती है, आ जाओ आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। सबसे जाती पतित से पावन बनने वाली आत्माएं कौन से अंग से पतित बनती है? जो सबसे श्रेष्ठ अंग कहा जाता है आंखें। दृष्टि से सृष्टि सुधरती, इसकी दृष्टि से है मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे ऊंचे हीरो पाटधारी है उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधर, वो ऊंचे ऊंचे पाटधारी ऊंचे ऊंचे हीरो पाटधारी के रूप में सारे संसार में जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, क्या बच्चा पैदा होता है ना घरों में परिवार में, तो बाजे गाजे बजाए जाते हैं कि नहीं बुलाए जाते हैं? तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? संगम से। जब भगवान बाप महाशिवरात्रि पर जिसका गायन है, बड़े से बड़ी अज्ञान रात्रि, जिस अज्ञान रात्रि में दुनिया तो अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई है, भौतिक ज्ञान के आलोड़न में पड़ी हुई है, लेकिन जो आध्यात्म ज्ञान का दम भरते ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण, चाहे वैदिक ब्राह्मण वाले हों चाहे वंश ब्राह्मण हो, दम तो भरते हैं, क्या कि हम ब्रह्मा पुत्र है मुखवंशावली, लेकिन परम ब्रह्म को नहीं पहचानते, जो सुप्रीम टीचर बना हुआ है, पहले सुप्रीम बाप बीत जाने वाले, सुप्रीम माता बड़े से बड़ी माता, फिर सुप्रीम टीचर का पात्र एक ही है, मुकर्रर आत्मा है। आज में भी थी, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगी, इसकी बड़े से बड़ी पढ़ाई है, राइम पढ़ाएंगे। ये बात अभी बच्चों की बुद्धि में आ रहा है, दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं आ रहा है कि भगवान पढ़ाते हैं। कौन? धनवान नहीं पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। जो भगवान भगवान का टाइटल लेता है वो बड़े से बड़ी प्योरिटी के भंडार का मालिक बनता है या नहीं बनता है? और प्योरिटी का भंडार पिताओं में होता है, माताओं में होता है, अदर कुमारों में होता है, कुमारों में होता है या कन्याओं में होता है? सोलह हजार कन्याएं जाई हुई है गोप गोपियों की रूप में। गोप गोपी क्यों? जिन्होंने भगवान के साथ इस दुनिया में रहकर गुप्त संबंध जोड़े हैं। क्या? गुप्त संबंध जोड़े हैं, सर्व संबंध जोड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मामुख से मुरली में कहते हैं, अव्यक्तवाणी में भी बताते हैं, इस संघ विधि ब्राह्मण जन्म में जिस संबंध कारस भगवान से नहीं रह सकेंगे उस संबंध के लिए जन्म जन्म तक तड़पते रहेंगे। क्या क्या होगी बात? है संतुष्टि? जो संतुष्टि लेना चाहते हैं वो संतुष्टि नहीं मिल पाई। तो ऐसी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सत्यमत्रे का सुखदान में तो प्राप्त होती ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी ऐसी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अनेक जन्मों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ये राजयोग की पढ़ाई है। जो राजयोगी पढ़ाता है, क्या? कौन पढ़ाता है? योगी, उसको योगी कहेंगे। वो योग लगाता है, वो तो योग नहीं लगाता। पतितों को योग लगाना पड़ता है, वो सदा पावन है, उसको योग लगाने की दरकार ही नहीं। तो कौन है ऐसा योग लगाने वाला जो अपन नंबर में योगी गाया हुआ है? योग ईश्वर, योगियों का ईश्वर है। ईश्वर माने शासन करता, कंट्रोलर। बताया वो शिव बाबा पढ़ाते हैं क्योंकि स्टडी करने वाले बच्चों को ये तो मालूम है ना? मालूम है कि नहीं मालूम है कि तुमको कौन टीचर पढ़ाते हैं?
नहीं मालूम
है। शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाप नहीं पढ़ाते हैं। क्या वो टीचर का धंधा करते हैं? नहीं, वो टीचर का धंधा नहीं करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ज्ञान धन देते हैं। जैसे परिवार में बाप कमाता है, जो बीज कहा जाता है, बीज रूप बाप, वो कमा करके की गोद में डाल देता है, माता की गोद में डाल देता है। ऐसे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप जो आशिक बन के आता है, वो किसकी गोद में डाल देता है? परम ब्रह्मा की गोद में डाल देता है। तो बच्चे जानते तो हैं कि कौन टीचर पढ़ाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो धर्म पिताएं ग्रेट कहे जाते हैं, या उन ग्रेट फादर्स का भी बाप जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, वो ही ग्रैंड फादर कहा जाता है। कौन? इसे सच्ची पर है, जो बापों का बाप है, ग्रैंड फादर, वो ग्रैंड फादर जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो स्टडी करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जानते हैं कि कौन टीचर पढ़ाते हैं। परंतु ये माया ऐसी है जो समझते भी है किस टीचर हमको पढ़ाते हैं, कौन? सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो भी भूल जाओ, क्योंकि ये भी जानते हैं ये कौन, ब्रह्मा, इनके फॉलोअर्स, ये भी जानते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऊंचे से ऊंचा है पढ़ाने वाला, ये जानते हैं। लेकिन ये बुद्धि में इनको नहीं आता कि ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा कहाँ होता है, कहाँ की बात है, हैं? निराकार दुनिया की बात है, साकार दुनिया की बात है, ऊंचे से ऊंचा है और उस ऊंचे से ऊंचा बाप से ऊंचे से ऊंचा बेहद का वर्षा पाना, बेहद का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। वो जीवन मुक्ति में रहता है, खुद ही नहीं रहता, जो बाप खुद ही नहीं है, उस बात का अनुभव करने वाला तो दूसरों को देगा, नहीं दे सकता। तो जो स्वयं अनुभव करने वाला है, मनुष्य शक्ति का बाप जीवन में रहते रहते सुख का अनुभव करने वाला, मानव जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाला, जो जीवन में रहते सुख का अनुभव करता है, परम ब्रह्म में प्रवेश करे, चाहे ब्रह्मा में प्रवेश करे, चाहे विष्णु बनने वाली आत्मा में प्रवेश करके प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ करे, करता है कि नहीं? प्रैक्टिकल वो करता है या जिसमें प्रवेश करके प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन कर देता है, प्योरिटी की, यूनिटी की यादगार राजधानी तैयार कर देता है। कौन है वो आत्मा? है? है? शिव। अच्छा, साकार निराकार का मेल, मनुष्य शक्ति का बाप 40 साल में राजधानी स्थापन कर पाया है? अपनी घरवाली का संगठन बना पाया? बना पाया? वो भी नहीं बना पाया। तो बताओ, जो ऊंचे की ऊंची राजधानी है, उसका प्योरिटी की यादगार है। क्या प्योरिटी से यूनिटी बनती है। वो आत्मा कौन?
लक्ष्मी।
इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। क्या प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल? शंकर को कहेंगे इम्प्रैक्टिकल। ज्ञान तो सारा है। क्या नक्शा सारा बुद्धि में है, नई दुनिया का, राजधानी का, लेकिन स्थापन नहीं कर सकता। क्या बात है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैल उसके ऊपर सवार है, वो बैलबाजी करवा देता है। क्या वो वासुकी नाग गले से पकड़ रखा, गले पड़ गया, छोड़ता ही नहीं। कब छोड़ता है? जब तक उस नाग की बुद्धि में पूरा ज्ञान न बैठ जाए तब तक वो छोड़ने वाला नहीं है। और जिसके गले में पड़ गया वो भी जानता है। क्या क्या जानता है? ये जो सारा ज्ञान है एडवांस ज्ञान, वो किसके लिए है? पहले पहले है व्यक्ति के पहले पत्ते के लिए। वो बाप का दिल है। हर एक बाप का दिल अपने बड़े बच्चे के ऊपर होता है या नहीं होता है? बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं स्त्री में हुए, उनका दिल किसके ऊपर रहा?
बड़े
बच्चे के ऊपर। तो ये भी बेहद का बाप है मनुष्य शक्ति का, जिसका दिल किसके ऊपर है? है मनुष्य शक्ति का, जो पहले से पहला पत्ता है, बड़ा भाई है पत्तों के बीच में, जिसको ब्रह्मा कुमारियों ने पहचाना कि वो दादा है। ब्रह्मा कुमारियों के लिए दादा कौन है? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की आत्मा। और हमारे लिए दादा कौन है? हमारे लिए वर्षा, अव्वल नंबर का लेने वाला बड़ा भाई कौन है? रूपों में, मनुष्य आत्माओं में जो शिव बाप का बड़ा बच्चा, वो हमारा दादा है। तो हमारा बाप दादा कौन हुआ? शिव बाप और रूहानी बड़ा बच्चा दादा। हम उसको बाप दादा मानते हैं। ब्रह्मा को मानिए, किसको मानिए? ब्रह्मा को ही बाप और ब्रह्मा को ही दादा।